शुक्रवार तारीख 11 नवंबर 2011। प्रवचन दो। ॐ नमः सिद्धेभ्य। ॐ नमः सिद्धेभ्य। ॐ नमः सिद्धेभ्य। ॐ शुद्धात्मने नमः। जं जस्य जं देशे जेन विहानेन जम्मि कालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्मं वा अहवमरणं वा तं तस्सतम्मि देशे तेन विहानेन तम्मि कालम्मि कोशकदिवारेदुम् इन्दो वा सह जिनेन्दो वा एवं जो निश्चयदो जानदि दौवाणि सौपज्जाये सो सद्दिट्ठि शुद्धो जो संकदिशोः कुदिट्ठि। कारण कार्य रहस्य पुस्तक में से षटकारक संबंधी अपना प्रकरण चल रहा है और अभी हम आए हैं हिंदी पृष्ठ 99 पर, 99 गुजराती पर 99 है। देखो बात यह है कि छठ कारक यानी कार्य संबंधी 6 प्रश्न उठ सकते हैं कि कार्य किसने किया, दूसरा प्रश्न क्या किया, इसका साधन क्या था यानी किसके द्वारा किया, किसके लिए किया, किसमें से किया और किसके आधार से किया। उसके उत्तर में जो 6 उसके आंसर्स आते हैं उनसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, यही 6 कारक है। कर्ता कारक में हमने देखा उसमें 2 ही प्रकार है, निमित्त और उपादान, वो सारे क्या कहलाएंगे, कर्ता कारक। उसमें से भी सच्चा कर्ता कौन है कि जो उस रूप परिणमता है वही उसका कर्ता है। हमारी बात ये हो रही थी कर्ता कर्म संबंध किसमें लगता है, तो द्रव्य का अपने पर्याय के साथ कर्ता कर्म संबंध है। तो ये किसी कार्य का कर्ता कौन है ये हम कैसा निश्चित करेंगे, तो ये प्रश्न पूछना कि उस रूप कौन परिणमित हुआ। कोई विशिष्ट कार्य हुआ है, रोटी बनी है, उसका कर्ता कौन, किसने बनाई है, तो रोटी रूप परिणमन किसने किया है, तो कहते आटे ने। आटा उस रूप परिणमित हुआ है वही उसका कर्ता है। ऐसे हर कार्य में उसका हम निशक लगाएंगे, निकष लगाएंगे, तो प्रत्येक जो द्रव्य है वो अपने ही पर्याय का कर्ता है, अन्य का कर्ता नहीं है। इसके संबंध हमने वो व्याप्य व्यापक संबंध की भी बात हमने विस्तार से देखी थी। अब हम यहाँ आते हैं 99 पृष्ठ पर कि मैं पर का या पर मेरा भला बुरा कर सकता है, मिला
जी।
हाँ, हमने क्या देखा था कि प्रत्येक द्रव्य में एक ऐसी शक्ति है, कौन सी, अकार्य कारणत्व, अकार्य और अकारण। कोई भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कारण भी नहीं है और कोई अन्य द्रव्य का कार्य भी नहीं है, तो वो किसका कार्य करता है, तो अपना अपना कार्य करता है और अपने अपने कार्य का वो करता है। पर द्रव्य में इसका कुछ नहीं चलता है, अपने आप अपने पर्याय का स्वयं ही करता है, उसके लिए उसके अन्य किसी की भी अपेक्षा नहीं है, बिल्कुल सेल्फ सफिशियंट है। तो मैं पर का या पर मेरा भला बुरा कर सकता है, कर्म मुझे संसार में घुमाते हैं, कर्म के कारण मुझे राग द्वेष होते हैं, आदि मान्यताएं क्या सच है, नहीं। तो इसी मान्यता को क्या कहा, मिथ्या तो है, अज्ञान है, ये हमारी भूल है, ये हमारी कल्पना है। निमित्त बिना कार्य नहीं होता, उचित निमित्त से कार्य होता है आदि शास्त्र में जो कथन आता है, ये शास्त्र का ही कथन है, इसके बिना कार्य नहीं होता है और कुछ कार्य में उचित निमित्त होता ही है, शास्त्र का ही वचन है, परंतु अभी वो वचन कैसा है, दो द्रव्यों का मिलकर कथन किया है, तो कहते वो व्यवहार नय का कथन है, औपचारिक कथन है। निमित्त कौन सा है ये बताने के लिए कहेंगे जरूर वहाँ पर। उसे निश्चय नय का कथन मानना या सत्यार्थ मानना यह भी मिथ्यात्व है, अज्ञान है। निमित्त का कथन हम पढ़कर यदि हम देखो इधर लिखा है कि शास्त्र के शास्त्र में के जीव ने चार घाती कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान प्राप्त किया, शास्त्र में लिखा है, हमने थोड़े ही अपने मन से लिखा है, परंतु वो कैसा कथन है, तो औपचारिक कथन है, व्यवहार का कथन है। दो द्रव्यों का, एक द्रव्य ने दूसरे में कुछ किया, ऐसा जो कथन आता है वो निमित्त का ज्ञान कराने के लिए निमित्त कथन होता है। रियलिटी क्या समझना, जीव की पर्याय जीव में अपने से होती है, कर्म की पर्याय कर्म में उसके अपने में होती है, अपने से होती है। हाँ, दो भिन्न द्रव्यों की पर्याय एक साथ होती है तो उसमें हम कहेंगे ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। लौकिक में भी जो हमें दिखाई देता है, ऐसे हमने ये मेडिसिन खाई और यहाँ ये बुखार अभी अभी था तो 15 मिनट में बुखार उतर गया, तो इसने कार्य किया कि नहीं, कहते वो शरीर की अवस्था शरीर के अपने में अपने से हुई है, तब सामने वो मेडिसिन वाला निमित्त वहाँ बना है। हमें जो जो कार्य अन्य द्रव्य करते हुए दिखाई देते हैं लौकिक में दिखाई देते हैं, हमें भासित होते हैं, परंतु वो कैसे है तो निमित्त है, परंतु वहाँ उस निमित्त की उपस्थिति में हाजिरी में कार्य तो वो पर्टिकुलर द्रव्य में अपने में हुआ है। शरीर की अवस्था शरीर
नहीं देता
है। हाँ, क्योंकि वो निज शक्ति है, उपादान शक्ति है। जैसे हमने उदाहरण देखा था, एक बीज में वृक्ष रूप होने की शक्ति है, हमने बीज को खोल के देखा तो उसमें तो कुछ नहीं दिखाई दिया, वो तो वेस्ट हो गया। फिर हमने ऐसा ही दूसरा बीज बो दिया, उसमें वो पानी डाला, मिट्टी में रखा वगैरह, तो उसमें से वृक्ष उग गया। तो ये शक्ति कहाँ, वो पानी में थी कि मिट्टी में थी? बीज में ही थी, क्योंकि पानी में और मिट्टी में होते तो चाहे जैसे बीज से चाहे जैसा वृक्ष मिलना चाहिए था, परंतु आम की गुठली बोए तो न्यू नहीं मिलेंगे, आम मिलेंगे। यानी वो शक्ति उसी में है, और वो शक्ति ऐसी तो बाहर में दिखाई नहीं देती है, क्योंकि नींबू का भी हमने काट कर देखा, उसका डिसेक्शन किया तो अंदर तो कुछ वृक्ष नहीं है ना, कुछ उसके कोई चाता पता कुछ नहीं है, बस सफेद सफेद कुछ दिख दिया हमें, परंतु उसी में वो पूरी वृक्षरूप होने की शक्ति पड़ी थी। जिस प्रकार मिट्टी द्वारा घट हो सकता है, परंतु मिट्टी द्वारा पट यानी वस्त्र होना अशक्य है, ये समयसार में लिखा है। हाँ, क्या लिखते है, मिट्टी के द्वारा घट होना घट हो सकता है यानी मटका हम ये जिसको कहते हैं, परंतु मिट्टी द्वारा पट यानी वस्त्र होना अशक्य है। उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य अपने स्वयं के भावों का यानी पर्यायों का कर्ता हो सकता है, परंतु पर भावों का पर की पर्याय का यानी पर के कार्य का कर्ता होना अशक्य है। जीव अपने भावों का कर्ता हो सकता है, परंतु जीव शरीर का कर्ता तीन काल में नहीं हो सकता। दोनों में कुछ ऐसी बातें बनती निमित्त नैमित्तिक संबंध से, तो जो इसके चाहे जैसे वहाँ कुछ बातें बनती है, निमित्तपना बनता है, तो ये क्या मानता है, यही मैं हूँ और मैं ही इसका कार्य करता, ये शरीर तो जड़ है, उसको अपना कार्य करने के लिए कहाँ अक्कल है, ऐसा लगता है ना। फिर भी आत्मा और पुद्गल दोनों की क्रिया एक आत्मा ही करता है मानने वाला मिथ्या दृष्टि है, यही तो अज्ञान है। क्योंकि हमें तो भासित होता है ना, जिस यहाँ क्षेत्र में मैं स्वयं हूँ उसी क्षेत्र में शरीर की रचना हुई है और उनके कार्य होते हुए दिखाई देते हैं, आपस में मेल जोल बहुत है, तो हमें लगता ऐसा है कि ये मैं ही कर रहा। कोई भी द्रव्य अन्य किसी भी द्रव्य का कर्ता होता ही नहीं, सभी द्रव्य अपने अपने स्वभाव के अनुसार परिणमते हैं। ये विश्व में अनंत द्रव्य है, उसकी अनंतता तभी टिक सकती है जो अपने अपने में वो अनंत में एक दूसरे में कोई गड़बड़ी नहीं करे तभी तो अनंतता टिकती है। यह जीव कैसा, यह मूर्ख उल्लू जीव व्यर्थ ही राग द्वेष करके आकुल व्याकुल होता है, दुखी होता है। यदि हमने मान लिया कि जैसी वस्तु व्यवस्था है कि अनंत द्रव्य है और प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना पर्याय, अपनी अपनी पर्याय अपने स्वयं के योग्यता के अनुसार होती है और अपने स्व समय पर होती है, हम चाहते कि उसकी विशिष्ट पर्याय हो जाए हमारी इच्छा के अनुसार, यानी हम दुखी क्यों हैं? अपनी इच्छा के अनुसार। क्या इच्छा कर रहे हैं? कि ये विशिष्ट द्रव्य की विशिष्ट पर्याय हो जावे। तो हमारी इच्छा न हो ये कब बन सकता है, या हम सुखी कब बन सकते हैं? या तो अपने इच्छा के अनुसार सभी द्रव्य परिणमित हो तो हम सुखी, या दूसरा उपाय क्या है? जैसे ये वस्तु व्यवस्था है कि अनंत द्रव्य अपनी अपनी योग्यता के अनुसार परिणमते हैं, ऐसा हम माने तो हम सुखी। तो इसमें से कौन सा उपाय करना चाहिए? क्योंकि इसकी एकाद इच्छा से एकाद द्रव्य परिणमित हो भी जाए बाय चांस। जैसे गांव में आपने देखा होगा बैलगाड़ी चलती है, कुत्ता उसके नीचे नीचे चलता है और मानता है मैं इसको चला रहा हूँ, कि वो कहीं राइट टर्न ले लिया और कुत्ता अपने वो तो धुन में चल रहा था, वो लेफ्ट में, अरे वहां कैसा गया, अभी मैं माफ करता हूँ चलो, फिर वो उसकी गाड़ी के नीचे चला जाता है, अभी मेरे अनुसार चलना, ऐसा कहता है। वो तो बैलगाड़ी तो अपने वो अपने कारण चल रही है और ये मानता है मैं इसको चला रहा हूँ। ऐसे ही इसकी इच्छा के अनुसार कुछ बन भी जाए तो मानता है देखो मैं इसको कर रहा हूँ, और नहीं होता तो फिर आकुलित हो जाता है। अनेक बार हमें इच्छा होती है और उसी प्रकार पदार्थ परिणमन करते हैं, फिर भी वे अपनी इच्छा के कारण परिणमित नहीं होते। क्या कहा? कभी कभी इच्छा के अनुसार उनका परिणमन होता है। हमने सोचा कि हमारे बच्चे हम ये मेडिकल में डॉक्टर हो जाए और वो हो गए, तो क्या आपकी इच्छा की इसीलिए हुए है? हाँ, वो अब बिना इच्छा के भी हो सकते। चार बातें हो सकती है, चार ही पॉसिबिलिटीज है, इसको चौभंगी कहते हैं। कैसे? कि मैंने इच्छा की कि मेरी बेटी डॉक्टर हो जाए, इच्छा की दो पॉसिबिलिटी है, वो डॉक्टर हो भी जाए और नहीं भी हो जाए। दूसरी दो बातें क्या है? मैंने इच्छा नहीं की कि मेरी बेटी डॉक्टर बन जाए, वो नहीं भी बनी या बनी भी, यानी पहले दो पॉसिबिलिटी है, ये दो पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा और तीसरी चौथी कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं है। तो प्रत्येक कार्य में घटित हो सकता है। तो यहाँ क्या कहते हैं कि यदि वो अपनी इच्छा के अनुसार किसी अन्य द्रव्य का कार्य हुआ भी समझो, फिर भी वो इच्छा के कारण नहीं हुआ है, सहज ऐसा हुआ कि जैसी इच्छा हुई है और वहाँ वैसा कार्य हुआ है। वो कुछ टीवी में मैच चल रही है, आपने इच्छा की कि इसने ऐसा बॉल मारना चाहिए, उसको मार दिया।
वहाँ 11 आदमी खेलते हैं और टीवी में करोड़ों लोग देखते हैं
और वो
चिल्लाते हैं इसको लगाओ लगाओ, मैंने बोला क्या और कोई सुनता नहीं उनकी,
और बाय चांस देखो मैंने बोला ना,
ये तो ठीक है सब कर रहे हैं और तुम नहीं कर रहे हो,
तुम पागल हो,
कभी देखती नहीं, पता ही नहीं क्या कर रही
है। और यार इस कमरे में पीछे उसकी पर जुआ खेलते हैं क्योंकि बोलो ये कितने बोल में आउट हो जाएगा, कितना वो रन हो जाए, मैंने बोला तेरे हिसाब से कुछ नहीं करने वाला है, उसकी चलते
ऐसा ही है। तो कहते उस प्रकार परिणमन हुआ भी तो भी इसकी इच्छा के कारण नहीं हुआ, ये बात बताना
होना था वही हुआ।
हाँ, हमारे यहाँ मैं हमेशा बोलती वो बॉल अपनी उपादान शक्ति से इधर से उधर, उधर से उधर उछल रहा है, यानी वो बैट से मारेगा तो भी वो तो निमित्त है, वो तो अपने कारण ही है वहाँ से यहाँ चला गया है ना, और फिर वो तो उधर उछलता है, उसके पीछे इतने उसके बाकी खिलाड़ी तो दौड़ते हैं और ये भी यहाँ सोफा पर बैठे बैठे उछलता रहता है। तो वे उनके परिणाम स्वभाव के कारण परिणमते हैं। और अज्ञानी जीव मैंने यह कार्य किया इस तरह की मिथ्या कल्पना करके पर के कर्तृत्व बुद्धि की मिथ्या मान्यता को पुष्ट करता है। ये जीव की कर्तृत्व बुद्धि इतनी पड़ी है कि ये सभी पूरा देश का मैं करने वाला हूँ मानता है, समाज का करने वाला हूँ मैं मानता है। बुद्धि का हमने शब्द क्या देखा था कल, पर्याय बुद्धि शब्द आया था। बुद्धि का अर्थ क्या लगाया था? मान्यता। पर्याय ने मनुष्य पर्याय, मैं मनुष्य पर्याय जितना हूँ, ये मान्यता क्या है? मिथ्या। अब यहाँ कौन सा शब्द आया? कर्तृत्व बुद्धि। पर पदार्थों का कार्य ने अवस्था मैं कर सकता हूँ, ये जो मिथ्या मान्यता है उस मान्यता को कहते प्रकर्तृत्व बुद्धि। बुद्धि शब्द है ना, देखो ये मिथ्या मान्यता यानी विपरीत मान्यता, खोटी मान्यता, उल्टी मान्यता। उसमें कौन कौन से ऐसे बुद्धि शब्द लगते हैं? एक तो अहम बुद्धि, शरीर मैं हूँ ऐसी मिथ्या मान्यता, उसको कहेंगे ये अहम बुद्धि है। पर पदार्थ में अहम बुद्धि, ममत्व बुद्धि यानी पर पदार्थों में ये मेरे है ऐसी ममत्व बुद्धि, ये घर मेरा है, पुत्र मेरे, कहना बात अलग है, ऐसी मान्यता की बात है, मान्यता का निषेध हो रहा है। तीसरी कौन सी है? कर्तृत्व बुद्धि, ये पर पदार्थों का कार्य मैं करता हूँ, ये जो खोटी मान्यता है उसको कहेंगे कर्तृत्व बुद्धि। एक है भोक्तृत्व बुद्धि, ये पांचों ही इंद्रियों के द्वारा हम ज्ञान करते हैं पर पदार्थों का, और मानते क्या है? हमने इसका भोग किया, लड्डू खाया, क्या किया? लड्डू, लड्डू खाया ने क्या किया? लड्डू का भोग लिया, भोग लिया ने क्या किया कि उसका जो मीठा स्वाद है उसको जाना, तो वो हमें इतना प्रिय है कि हम क्या, हमने तो उस राख का ही भोग किया एक्चुअली। पर पदार्थों को तो कोई भोग ही नहीं सकता है, हमने तो मात्र उसको जाना और माना, हमने इतनी चीजों का भोग लिया कि उसकी भोक्तृत्व बुद्धि। और ऐसे भी वो चलते हो तो पर पदार्थ अपने ज्ञान के गेय है, परंतु ये इतना उसने रस लेके रुचि पूर्वक पर को जानते रहता है और कहता है मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ।
इसमें
अपनी कल्पना से ये जो हम शास्त्र में शब्द पढ़ते हैं उसको तोड़ मरोड़ कर उसका अर्थ का अनर्थ कर देता है। जानने वाला है परंतु वो राग से ही जान रहा है और उसमें उसकी रुचि है और मानता है मैं क्या ज्ञाता दृष्टा हूँ। छोटा बालक चलते हुए गाड़े को हाथ लगाकर मानता है कि मैं यह गाड़ा चला रहा, वैसी ही अपनी मान्यता तो नहीं है ना, इस बात का प्रत्येक को विचार करना चाहिए। क्योंकि अपनी मान्यता में क्या पड़ा है, सूक्ष्म या स्थूल कोई जो यहाँ दोष पड़ा है वो कोई दूसरा आके निकालने वाला नहीं है, हमें ही सोचना है। जब हम शास्त्र में ऐसी बातें पढ़ते हैं तो अपने विचारों में ऐसी कोई भूल नहीं है, ये हमें ही तोड़ना चाहिए। तुम कहोगी सुबह से रात तक हम कामों के बोझ तले मरे जा रहे हैं, और तुम कह रही हो कि इनमें से एक भी कार्य हमने नहीं किया। घर की सफाई, झाड़ू लगाना, रसोई बनाना, कपड़ा धोना, बर्तन मांजना, बच्चों की देखभाल करना, इतना ही नहीं हमारे व्यावसायिक कामकाज ये सारा हम नहीं कर रहे तो और कौन कर रहा है? ये कितना गुस्सा आता होगा ना। जाने दो कल से हम ये सारे कामकाज करेंगे ही नहीं, देखे तो कैसे होते हैं। माना क्या हम ही करते हैं, है ना? कह दिया जो कहना था, अब जरा शांत होकर ठीक तरह से ध्यान दो। जो कार्य, जो काम तुम कर ही नहीं सकती थी, कर नहीं रही थी, उन्हें तुम कैसे छोड़ सकोगी? हम अब नहीं करेंगे इस कथन द्वारा हम कर सकते हैं इस मान्यता का ही तुम प्रदर्शन कर रही हो। बेटियों इस तरह गुस्सा मत होना, मैं मनुष्य हूँ, इस तरह की इस मनुष्य पर्याय में, मनुष्य पर्याय को क्या कहा यहाँ? असमान जातीय द्रव्य पर्याय में, देखो इसका जरा अर्थ देखते हैं, कौन से शब्द आए? असमान जातीय द्रव्य पर्याय। तो ये द्रव्य पर्याय ने दूसरी भी कोई पर्याय होगी, एक होती है द्रव्य पर्याय, एक होती है गुण पर्याय। मालूम है भेद मुकुंद भाई? नहीं मालूम। ये जो हम ज्ञान गुण की पर्याय, श्रद्धा गुण की पर्याय, चारित्र गुण की पर्याय, ये जो पर्याय की चर्चा करते हैं, ये कौन सी है? तो गुण पर्याय है। द्रव्य में अनंत गुण है और प्रत्येक गुण की अपनी अपनी हर समय पर्याय होती रहती है।
भेद से किया।
हाँ, तो उसको हम कहेंगे क्या है? ये पर्याय है, गुण पर्याय, गुणों की पर्याय होती है। उसमें भी हम देखते हैं ना, वो अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। व्यंजन पर्याय किसको कहना, ये तो मालूम है आपको। प्रदेशत्व गुण की पर्याय को व्यंजन पर्याय कहेंगे। प्रदेशत्व गुण को एक अलग निकालो, बाकी अनंत गुणों की पर्याय है उनको कहेंगे अर्थ पर्याय। इतना तो मालूम हो गया। अब ये द्रव्य पर्याय क्या बात है? तो कहते अनेक द्रव्यों की मिली जुली जो पर्याय है उसको द्रव्य पर्याय कहते। आपको ऐसी कोई मालूम है अनेक द्रव्यों की मिली जुली पर्याय?
अपना शरीर।
हाँ, शरीर
मनुष्य है ना।
देखो ये क्या है?
पुद्गल
है, परंतु ये परमाणु है क्या? अनेक यानी अनंत परमाणुओं की मिली जुली एक पर्याय हमें दिखाई दी है, एक स्कंद है इसको हम। और इसमें कैसे द्रव्य है? सारे पुद्गल 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 है, समान जाति के द्रव्य है, और समान जाति के द्रव्यों की एक पर्याय एक बंधन रूप अवस्था हुई है, इसको हम कहेंगे समान जातीय द्रव्य पर्याय। यानी जो सभी जो पुद्गल के स्कंद है वो क्या है? समान जातीय द्रव्य पर्याय। अब ऐसे दो भिन्न भिन्न जाति के भी द्रव्य कभी एक दूसरे में मिलते हैं तो क्या? हाँ, यहाँ एक जीव है उसके साथ कर्म और शरीर बंधन रूप से अभी वर्तमान में पाए जाते हैं। तो ये कैसी पर्याय है? असमान जाति की, भिन्न जाति की, सदृश नहीं, वो भी सदृश जाति के द्रव्य। एक तो जीव द्रव्य और एक पुद्गल द्रव्य, अनंत पुद्गल द्रव्य है। ये अभी इकट्ठे इस तरह से एक दूसरे के साथ मिले जुले एक में खोए नहीं है, संयोग में है। यहाँ एक जीव द्रव्य है, अनंतानंत पुद्गल कर्म रूप से है, और अनंतानंत परमाणु शरीर रूप से पड़े हैं, और वो अभी एक बंधन रूप ऐसी अवस्था है कि ये सब एक एंटिटी, एक कोई चीज दिख रही हमको, उसको हम मनुष्य पर्याय कहते हैं। ये मनुष्य पर्याय हो, नारकी को हम कहेंगे ये नारकी पर्याय है, ये तिर्यंश पर्याय है, ये देव पर्याय है। ये कैसी पर्याय है? असमान जातीय द्रव्य पर्याय, एक जीव और अनंतानंत पुद्गल परमाणु। तो यहाँ क्या कहते देखो, मैं मनुष्य हूँ, ये क्या हुआ? उसने क्या मान लिया? इस मनुष्य पर्याय में, मनुष्य पर्याय को ही दूसरा नाम क्या दिया? असमान जातीय द्रव्य पर्याय में एकत्व बुद्धि होने के कारण, ये पूरा यहाँ जो असमान जातीय द्रव्य अनेक द्रव्यों की मिली जुली पर्याय है, उसमें से देखो कोई बहुत बड़ी कंपनी है और उसमें आपके पास एक स्टॉक जो आप लेते हैं 100 रुपए का एक स्टॉक है, और वो मिलियंस और मिलियंस इतने वो बड़ा कंपनी है, उसके इतने स्टॉक होल्डर्स हैं, तो आपका उसमें कितना है परसेंटेज? हाँ, अभी जितना मिलियन था पार्ट होगा या उससे भी कम होगा। ऐसे यहाँ एक जीव और बाकी सारे कितने द्रव्य? तो अनंतानंत द्रव्य, और इन सबको ये मैं ही हूँ मान लिया उसने। भूल क्या हुई उसकी? जितना स्वयं है उतना मैं हूँ मानना था, परंतु वो मैं तो मैं हूँ ही, ये भी मैं ही हूँ। ये अनंत द्रव्यों का जो परिणमन हो रहा है वो मैं कर रहा हूँ, ऐसी मान्यता है उसकी। तो असमान जातीय द्रव्य पर्याय में कैसी बुद्धि हुई? अभी एकत्व बुद्धि, जिसको हम कहेंगे अहम बुद्धि। ममत्व ने मेरा, एकत्व है ना, मैं उस रूप हो गया हूँ, यानी मेरा अस्तित्व शरीर से भिन्न है, ये इस बात का उसको अता पता नहीं है। ये एकत्वपना हो गया उसको, एकत्वपने की मान्यता हो गई। इसके कारण इस शरीर की क्रिया मैं करता हूँ, ऐसी ही जीव की मान्यता कब से? अनादि काल से चली आ रही, वर्तमान में मनुष्य पर्याय में मान्यता हो रही, उसके पहले जिस पर्याय में था, कुत्ता था, तोता था, गधा था, जो कुछ था, तो उस शरीर रूप मैं हूँ ऐसे मान ले आया था, और उस शरीर का कार्य मैं कर रहा हूँ ऐसा मान रहा था। ये मिथ्या मान्यता उसको सिखानी नहीं पड़ती,
साथ में लेके आया
अनादि से ही चल रही है, इसके लिए सीख की जरूरत नहीं है। जब सम्यक मान्यता हो जाती है उसको ज्ञानी के सीख की आवश्यकता है, आवश्यकता है नहीं, निमित्त रूप से होती है। वहाँ भी वो निसर्ग जो सम्य दर्शन कहा है, वहाँ पर भी पूर्व भव की देशना मिली हुई होती है उस जीव को। अनादि से ये जो मिथ्या मान्यताएं चलती है, किसी एक पॉइंट पर उसको ज्ञानी के द्वारा उपदेश मिलता है कि ये तेरा स्वरूप क्या है और ये पुद्गल का क्या है, ये छह द्रव्य कैसे भिन्न है, उनकी क्या परिणमन व्यवस्था है, तब जाके सोचता है और तब जाके उसको सम्य दर्शन होने का चांस मिलता है। परंतु ये मिथ्या मान्यता उसको सिखानी नहीं पड़ती है, अनादि से चली आ रही। हाँ ये हो सकता है, मिथ्या मान्यता तो ये चली आ रही है और ऐसे उपदेशक मिलते हैं कि यही मान्यता और पुष्ट करते हैं, जिसको हम गृहित मिथ्या तो कहते हैं। एक बार यहाँ मिथ्या की चर्चा बहुत चली ना, बहुत सारे लेक्चर हुए थे। आचार्य करुणा बुद्धि से इस विश्व के सभी पदार्थों की कारण कार्य व्यवस्था और उसका रहस्य बताकर इस जीव के कल्याण का ही मार्ग बता रहे हैं। देखो ये करुणा बुद्धि से ये उपदेश दे रहे हैं, उनके तो मार्ग मिल गया है, अंतरंग में स्थिर हो जाते हैं और आत्मा के आनंद का अनुभव लेते रहते हैं, परंतु इतनी स्थिरता नहीं अभी उनकी, तो फिर शुद्धोपयोग में से बाहर आते हैं छठे सातवें गुणस्थान की चलती बात, और फिर उनको जब वो शुभराग में विद्यमान है तब उनको ये ऐसा उपदेश देने का भाव सहज आता है। तो कहते ऐसी करुणा बुद्धि उनके सहज होती है कि जीव जो दुखी है वो अपने अज्ञान से दुखी है, ये बात उन्हें पता है, इसलिए उनके ऐसा सहज भाव हो जाता है कि जो जैसे मैंने ये बात समझकर सुख पाया है, वैसे इस दुनिया के सभी जीव इस मार्ग को प्राप्त हो जावे। तो वो उपदेश देते हैं, क्या बताते हमें कि सभी पदार्थों की कारण कार्य व्यवस्था, प्रत्येक द्रव्य में कार्य ने उसकी अवस्था हो रही है, तो उसके कारण संबंधी क्या व्यवस्था है इस विश्व में, कौन से द्रव्य कौन से अन्य द्रव्य का क्या क्या कार्य कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हमारा अपना कार्य हमारी अपनी पर्याय अन्य कौन कर देगा, कोई भगवान कोई गुरु तो हमारा कल्याण करेंगे कि नहीं करेंगे। तो कहते हैं कारण कार्य व्यवस्था और उसका रहस्य बताकर, हमने पूछा था ना क्रमबद्ध पर्याय क्या है, द्रव्य है गुण है क्या पर्याय है, तो ये तो कारण कार्य व्यवस्था है, कोई पर्याय नहीं है, पर्याय नहीं है क्रमबद्ध पर्याय, पर्याय नहीं है, नहीं क्रमबद्ध पर्याय, क्रमबद्ध पर्याय एक समय की पर्याय में बद्धता कहाँ से आई और क्रम कहाँ से आया, क्रम कहाँ हो सकता है, पर्यायों का समूह अनादि अनंत पर्यायों का समूह है, तब हम कह सकते हैं कि इसका ये क्रम है और यही उसकी वो बद्ध है, उसका एक विशिष्ट क्रम से हो रही है। तो ये तो परिणमने की व्यवस्था है, वस्तु की परिणमन व्यवस्था है, वो तो द्रव्य का स्वभाव है, ख्याल में आई बात, एक पर्याय की तरफ देख के हम वो क्रमबद्ध का निर्णय नहीं कर सकते, क्रमबद्ध का निर्णय अपने द्रव्य के सन्मुख होकर हम कर सकते हैं, इसलिए वो एक परिणमन व्यवस्था है, कारण कार्य व्यवस्था है कि प्रत्येक पर्याय अपने समय पर निश्चित समय पर निश्चित पर्याय होती ही होती है और विशिष्ट क्रम से ही होती है, जिसको हम सीक्वेंस कहेंगे, प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना सीक्वेंस अलग है और वो अनादि अनंत पर्यायों का जो क्रम है वो प्रत्येक द्रव्य का अलग अलग है। हम यहाँ एंटर हुए तो हमारे दसों फिंगर्स के वो इम्प्रेशन लिए, क्यों, क्योंकि हर एक के अपने अपने अलग अलग होते हैं, एक से दूसरे से मैच नहीं होता, ऐसे यहाँ अनंत जीव द्रव्य है उनके अपने अपने पर्यायों के क्रम भी अपने अपने अलग अलग है, तो अनादि अनंत ये पर्यायों का समूह है, वही तो द्रव्य का अपना उसकी अपनी स्पेशलिटी है, उस क्रम में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान के ज्ञान में जब हम कहेंगे उन्होंने तीन काल की पर्याय सब जान ली है तो निश्चित है तब जाने कि नहीं निश्चित है ऐसा जाना तभी तो जानेंगे जो होने वाले भी यही क्रम से ऐसे ही होने वाली है ये तभी कह सकते कि वो पदार्थ में निश्चित है उन्होंने जानी इसलिए पदार्थों को पराधीन नहीं होना पड़ा पदार्थों में वो निश्चित है क्योंकि पदार्थ का वो अपना है स्वभाव तीन काल की पर्याय पदार्थ में ही क्रमबद्ध है तो जो है उसको केवल ज्ञानी ने जाना है यानी कोई पराधीन नहीं है केवल ज्ञानी ने जाना इसलिए हम पराधीन नहीं है और हमारी ऐसी अवस्था इसलिए उन्होंने जाना है वो पराधीन नहीं है वो अपने ज्ञान में स्वतंत्रता से जान रहे और हमारी पर्याय हमारे में स्वतंत्रता से हो रही है ऐसी स्वतंत्र वस्तु व्यवस्था है परिणमन व्यवस्था है प्रत्येक द्रव्य में इसका निर्णय करने जावे केवल ये कारण कार्य संबंधी निर्णय हो जावे तो जीव की तो आकुलता कम हो ही हो जाएगी और वो निश्चिंत होकर उसका अपना भी उसकी जो यथा योग्य सम्य दर्शन की पर्याय भी शुरू हो जाएगी हमें तो चिंता कैसा करे क्या करे अभी क्या करे इतना पड़ा अभी क्या करना चाहिए तब हमारी हो जाएगी ये आकुलता ही व्यर्थ है छन्यती बात इसको हम कल फिर दोबारा ले लेंगे क्योंकि अभी चार पांच लाइन और है यही रुकेंगे अपना समय हुआ है बोलो 24 भगवान की।